आज जो विषय मैं आपके साथ लेने जा रही हूं वह विषय बहुत सामयिक है। आज के समय की जो डिमांड उस अनुसार अपने आप को सेट करना ये हमारी अपनी निजी जिम्मेवारी है। प्यारे बाप दादा ने बहुत पहले अपनी मुरली के माध्यम से आज के दिन की आने वाली परिस्थितियों के बारे में बताया हुआ है। अगर आप 40 साल पहले की मुरलियां पढ़ेंगे उसमें बाबा ने स्पष्ट रूप से चार परीक्षाएं बताई थी जो आज हम सब दे रहे हैं। याद करा देती हूं, पहली परीक्षा बाबा ने कहा जो संस्कार आप समझते हो कि हमने जीत लिए हैं वे संस्कार पुनः सुजाग हो जाएंगे। कई बार कई संस्कारों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं लेकिन बाबा ने कहा एक बार वो जागेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि प्रकृति की ओर से परीक्षाएं आएंगी और अगर योगयुक्त होंगे उन परीक्षाओं को सहज पार कर सकेंगे। मैं इस विषय को भी लूंगी। तीसरी बात, जिन लोगों को आप अपना समझते हो उन पर फेथ रखते हो, जिनको आप समझते हो ये तो अपने हैं, उनसे ही आपको धोखा मिलेगा। और चौथी बार बाबा ने कहा क्योंकि असामयिक अकाल मृत्यु का बाजार गर्म होगा तो जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी वो इतना फास्ट शरीर नहीं ले सकती, इसलिए ईविल सोल्स का भी पार्ट चलेगा। और उसके साथ साथ बाबा ने जब विदेशियों से चर्चाएं की हैं तो विदेशियों से बात करते हुए बाबा ने एक बीमारी का वर्णन 40 साल पहले ही किया था और उसका नाम था डिप्रेशन। और आज हम देख रहे हैं हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है। 2020 में हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में होगा। हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं और हमारा शिक्षक सुप्रीम है। सुप्रीम शिक्षक ने हमें सिलेबस भी दिया है और उस सिलेबस को पढ़ाया भी है, तैयार किया है। उन परिस्थितियों का सामना हमने कैसे करना है ये बाबा ने पढ़ाया हुआ है। कोई नई बात मैं आपको बताने नहीं जा रही हूं। बाबा की वे बातें केवल रिवाइज करूंगी, जैसे बाबा की कल की मुरली में था कि वे स्वभाव, तीन चीजें बाबा ने कही जिनसे ब्राह्मण बच्चे परेशान हैं। एक, चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि और पुराने संस्कार। इसमें जो धारण करने योग्य और ध्यान पर देने योग्य बात थी, वो कल मुझे भी अच्छी तरह रजिस्टर हुई जब हम ये कहते हैं ये मेरे पुराने संस्कार। तो जिस चीज को हम मेरा कहते हैं उसको हमें स्थान देना पड़ता है। मेरा है तो अपनत्व है, मेरा है ओनरशिप है। और बाबा ने कल की मुरली में ये स्पष्ट रियलाइज कराया कि आपके संस्कार ये नहीं है, आपके संस्कार पुराने से पुराने आदि और अनादि संस्कार है। अतः जब कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? अगर उस समय, जिस समय पुराने संस्कार अग्नि के रूप से आपके सामने आए हैं, उस समय आप याद करो कि ये मेरे आदि अनादि संस्कार इमर्ज हो जाओ, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की एक विशेषता बाबा ने बताई हुई है, अगर आप याद करेंगे तो वो विशेषता श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णित, और उसके बिना अपना पुरुषार्थ संपन्न भी नहीं होता, और वह है जिसे बाबा ने कहा बहु काल का अभ्यास। बहु काल का अभ्यास, और यह भी बाबा ने बताया कल कि हर दो मिनट के बाद अशरीरीपन का अभ्यास करो, मैं फरिश्ता हूं ये अभ्यास करो। ठीक है, लेकिन अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, ताकि ये पुराने संस्कार जिनको हम कहते हैं वो इमर्ज ही न हो, उसके लिए साधन क्या है? नेगेटिव पुरुषार्थ करना, यानी ये न हो, मुझे ये नहीं करना है। जैसे अंधकार होता है, अंधकार को मिटाने के लिए हम सिंपल काम करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लाइट होती है और अंधकार भाग जाता है। हम अंधकार को नहीं भगाते हैं, लेकिन पॉजिटिव पुरुषार्थ करते हैं प्रकाश लाने का। इसी रीति से जब हम अपने संस्कारों को जीतना चाहते हैं, तो अगर मैं बार बार ये याद करूंगी मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इस संस्कार को जीतना है, मुझे ये करना है, तो आपकी कॉन्शियसनेस में क्या बस रहा है? नेगेटिव बस रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, तो आप नेगेटिव संस्कार की कॉन्शियसनेस में है ना। मुझे झूठ बोलना नहीं चाहिए, तो आप किसकी कॉन्शियसनेस में? झूठ की है ना। इसके विपरीत मुझे शूद्रपन के संस्कारों में नहीं रहना है, ये नेगेटिव है, और मुझे दैवी संस्कार में रहना है, ये है पॉजिटिव। बजाय इसके कि मैं इन्हें मिटाने की कोशिश करूं जो हमने इतने वर्ष की है, हरेक ने कितने सालों से अपनी कमजोरियों को, कमियों को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन मिटी। अगर हम इसके विपरीत करें, मैं देवता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं लाइट हाउस, ये पॉजिटिव एफर्ट, पॉजिटिव पुरुषार्थ मेरे स्वरूप को बना देगा। मैं शूद्र नहीं हूं तो कुछ तो हूं ना, वो जो मैं हूं उसका आवाहन कर। डेली इस बात का आवाहन करो कि मैं परमधाम से उतरी हुई फरिश्ता हूं, देवता हूं, मैं इस धरती पर पूज्य स्वरूप में इमर्ज हुई। अब आप सोचिए आपकी थिंकिंग कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए जहां तक हो सके मैं ये नहीं हूं न कहकर मैं क्या हूं वो मुझे आवाहन। इससे मेरे वो संस्कार समाप्त होंगे, दैवी भरते जाएंगे। दैवी संस्कार अचानक सब इकट्ठे नहीं आ जाते, अभ्यास से आते हैं। तो मुझे अभ्यास करना, जितना आवाहन करती रहूंगी, आप एक सेकंड में अभ्यास करके देखिए, मैं आपको अभ्यास के लिए बोल रही हूं, मैं शूद्र नहीं हूं इसका अभ्यास करें, आधा से एक सेकंड, मैं शूद्र नहीं हूं, मन में सोचिए मैं शूद्र नहीं हूं। अब ये सोचिए मैं सतयुगी, 16 कला संपूर्ण, सूर्यवंशी देवता हूं। एक मिनट के लिए इसको इमर्ज करिए। दोनों में अंतर महसूस हुआ। दूसरी बात, जो वर्तमान समय के अनुसार हमारी स्थिति और परिस्थिति का सामना करने के लिए चाहिए। आज का समय डिमांड करता है कि हम बिल्कुल अचल और अडोल रहें। इसके लिए बाबा ने हमें सारा ज्ञान दिया हुआ है, हर प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है। और अगर स्थिति की बात हम करते हैं तो स्थिति को ठीक रखने का साधन ज्ञान है। हर सिचुएशन में ज्ञान की कौन सी पॉइंट अप्लाई करनी है, बाबा ने हमें अच्छी तरह मुरलियों के माध्यम से समझाया हुआ है। कली की बात है, कोई आत्मा से बात हो रही थी। मैंने कहा देखो कितनी सेवा आपने की, लेकिन आपका चित्र कहीं पर भी नहीं है। कितना सुंदर रिप्लाई उन्होंने दिया कि बाबा अपने बच्चों को, अपने वैल्यूएबल बच्चों को डब्बी में छिपा के रखता है। ताकत मिली। दूसरी मुरली, एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे अगर तुम्हारा चांस बनता है और तुम्हें नहीं दिया जाता, तुम कुछ करो या ना करो तुमको नंबर मिल जाएंगे, तो किस बात की चिंता। मैं अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ूं? देखा मुझे पूछा नहीं, देखा मेरे साथ ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। स्थिति नहीं बिगाड़नी, क्योंकि ये कलयुग के अंतिम चरण पर है और कलयुग के अंतिम चरण पर सब कुछ गलत ही होने वाला है, राइट होने वाला नहीं है। ये आशा रखना कि राइट होगा वो नहीं होगा। अब कलयुग के अंत में मैं सतो प्रधानता सोचूं तो ये तो मेरी अपनी समझ की कमी होगी ना। ज्ञान का, प्यारे भाई और बहनों, हमने वह उपयोग जो हमें सही मायने में करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। छोटी सी घटना हुई थी, अपना ये सौभाग्य रहा है कि आदरणीय गुलजार दादी के साथ हम सेवा पर हैं दिल्ली में, पांडव भवन में दादी के साथ रहते रहे हैं। एक छोटी सी घटना हुई थी, आज से कोई 42 साल पहले की बात मैं कर रही, 45 साल पहले की छोटी सी घटना हुई थी। मेरे को मंच संचालन करना था। उस छोटी सी घटना ने मुझे हिला दिया, स्थिति बिगाड़ दी। 45 साल पहले मैं भी बहुत छोटी थी, तो मैंने दादी गुलजार को कहा, दादी मैं ये नहीं करूंगी, आप किसी को भी बोलो वो करें। दादी कुछ नहीं बोले। दादी ने इतना ही बोला, क्या ये ज्ञान है? क्या ये ज्ञान है? बात हुई, आपकी स्थिति बिगड़ी और आप अपने कर्तव्य से ना कर रही हो, क्या ये ज्ञान है? ज्ञान है, हम सब करते हैं। जाओ मैं नहीं करूंगा, जिससे कराना करा लो, करते हैं। अगर हम ज्ञान को अप्लाई करें, जो था वो हुआ, फिनिश्ड, आगे चलो। हमें अपना कर्म और अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई अधर्म कर रहा है, आप समझ रहे हो ये अधर्म है, गलत कर रहा है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप ज्ञान के आधार से अपने आप को समझा सकते हैं कि वो जो कर रहा है करने दो, मेरा कर्म धर्म मेरे साथ है। मेरा कर्म क्या कहता है और मेरा धर्म क्या कहता है, मुझे वो करना है। स्थिति अचल अडोल होगी तो आज की परिस्थितियों की डिमांड एकाग्रता। अगर स्थिति मेरी हलचल वाली है, एकाग्रता कहां से आएगी? और जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं, तब तक परिस्थिति को सही स्वरूप में न देख सकेंगे, न पहचान सकेंगे, न उसका रिस्पॉन्स एग्जैक्टली कर सकेंगे। इसलिए एकाग्रता का होना अनिवार्य है। हम सब अर्जुन हैं और अर्जुन की विशेषता धनुर्विद्या में उसकी जो प्रवीणता थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण था एकाग्रता। अर्जुन को कहते हैं ना, तीर लगाओ, एकाग्रता। जो कल बाबा ने मुरली में कहा, चंचल मन भटकती बुद्धि, उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। गुलजार दादी छोटी छोटी बातें सिखाते हुए ये धारणाएं पक्की कराते रहे। दादी क्लास कराते थे, मानो क्लास में हम सामने बैठे हैं, कोई आया और हमारी नजर वहां गई तो दादी कहते थे, क्यों आपको बिठाने की ड्यूटी मिली है क्या? नहीं दादी, हमें तो नहीं मिली। तो उधर क्यों देखा? क्यों देखा? उधर देखा माना चंचल मन भटकती बुद्धि, यहां से एब्सेंट, सुन नहीं रहे। तो बाबा ने एकाग्रता का अभ्यास, और दादी ने, बाप दादा ने अव्यक्त रूप की जो मुरलियां चली हैं, उसमें बारंबार एकाग्रता के ऊपर कहा है। ये हमारा वर्तमान समय का पुरुषार्थ होना चाहिए, एकाग्र। आप कहेंगे बहन जी ये तो को बड़ी सरल सी चीज है, आप करके देखो, आप करके देखो। हम लोग दिल्ली में 1 मिनट गेम करते हैं और उसमें एक टॉपिक देते हैं और कहते हैं बस इसी के बारे में सोचना है, कोई दूसरी चीज आए तो पॉइंट डालना। एक भी नहीं निकलता जो कहे कि मुझे और कुछ भी याद नहीं आया। इस मन को इतना भटकने की आदत पड़ी हुई है, इस पर अटेंशन देना। आप करके देखिए, जब आप गाड़ी में हैं, कार में हैं, पैदल चल रहे हैं, ऑफिस में हैं, खाना बना रहे हैं, आप मन की एकाग्रता का अभ्यास करिए। पता लगेगा मन कहां। और अगर एकाग्रता नहीं है तो बाबा में टिकेगा कैसे, बाबा से प्रेरणा लेगा कैसे। हिलता डुलता होगा, डोलता सिंहासन होगा, तो बाबा से ले कैसे सकेंगे। फिर हम कहेंगे बाबा की मदद नहीं मिली। बाबा कहते मैं मदद देने को तैयार हूं, तुम पात्र भी तो तैयार हो। पात्र तो हम है ना, तैयारी तो हमें करनी है ना। तीसरी बात, बहु काल से साक्षी दृष्टा होकर कार्य करना। हम सब जानते हैं हम एक्टर्स हैं, हम सब जानते हैं हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन साक्षी दृष्टा है। जब कोई फिल्म होती है आप देखते हो कि ये व्यक्ति अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, फालतू इस व्यक्ति को पीट रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्या आप अपनी सीट से उठकर जाके उसको समझाते हो? समझाते हो? चुप करके देखते हो ना? तो ये हलचल औरों के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में आना, ये कौन सा ज्ञान है? जितना साखी दृष्टा होकर के रहेंगे उतना अपना पार्ट अच्छा प्ले करेंगे, अनासक्त होंगे, डिटैच्ड होंगे। और जो आत्मा डिटैच होती है वो अपना रोल बेस्ट प्ले करती है। आज समय की डिमांड, परिस्थितियों की डिमांड साखी होगी। हमारे प्रेम दीदी थे देहरादून वाले, बहुत खुश रहते थे। एक बार मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मैंने कहा दीदी आप हमेशा इतने खुश रहते हो, आपकी खुशी का राज क्या है? उन्होंने कहा, आशा मैंने अपने आप को ये सबक पढ़ाया ही नहीं है कि मैं किसी को चेंज कर सकती हूं। हर आत्मा का अपना पार्ट। हम परेशान होते हैं, गलती दूसरा करता है और परेशान हमें। वो गलती करके गुलजार दादी कहती है एयर कंडीशनर चला के आराम से डनलप पिलो लेके सोया हुआ है और हम परेशान हैं। क्यों? वो मौज में, गलती करके मौज में है और हम सीधे सच्चे साफ होके अच्छे बच्चे होके हम परेशान हैं। तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है ना, तभी हम परेशान हैं। क्या गड़बड़ है? दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने को सेट नहीं कर रहे हैं, अपने को मुझे सेट करने के लिए मिला है, दूसरे को एडजस्ट करने के लिए नहीं मिला है। ये मेरा पार्ट नहीं है। अगर मैं दूसरे का पार्ट प्ले करूंगी तो परेशानी तो होगी। इसलिए अपना पार्ट मुझे अच्छे से अच्छा प्ले करना है। ठीक है, साक्षी दृष्ट। चौथा पांचवा जो भी है, फुल स्टॉप लगाओ। जैसे एग्जामिनेशन के दिन नजदीक होते हैं तो आपने देखा होगा बच्चे जो हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, एनर्जी वेस्ट नहीं करते। उनके तो जब एग्जाम के दिन होंगे तो, हमारा तो एग्जामिनेशन चल रहा है। मम्मा कहा करती थी हमेशा इस संसार को समझो कि ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, जिस हॉल में हमारी परीक्षा निरंतर चल रही है। परीक्षा देते समय कोई मोबाइल व्हाट्सएप खोल के देखेगा? बताओ, उसके पास टाइम होगा? हमारे पास टाइम कहां से आया? तो हमें वेस्टेज बचानी है, टाइम मनी एनर्जी। एनर्जी के भिन्न भिन्न फॉर्म, संकल्प की एनर्जी, वाणी की, कर्मों की, ये सब बचानी है। बचेगी कैसे? एक फॉर्मूला बाबा ने बताया हुआ है और बाबा ने हम सब बच्चों को उसके अभ्यास के लिए कहा हुआ है। वो फॉर्मूला है फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई भी बात हो जाए तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। और इसको रोज यूज करो, इस फॉर्मूले को। कोई भी बात है ना, बढ़ाओ नहीं। आपने गुलजार दादी की वाणी देखी है? 10 शब्द बोलने होंगे ना, उसको 2 शब्दों में बोलेगी। जानकी दादी की वाणी देखिए कितनी एसेंसफुल है। कल मैंने दादी से कहा, दादी क्या बात है, आप एक मिनट स्टेज पर आते हो, एक मिनट दृष्टि देते हो, एक मिनट ये करते हो, सबको इतना एनर्जाइज कर देते हो, क्या बात है। दादी ने कहा 3 बातें, दिल की सच्चाई, प्रेम और रूहानियत। इससे जो अपनापन आता है, वो अपनापन ऐसा अनुभव कराता है, दिल की सच्चाई। मुस्कुराहट हो तो सच्ची हो, आर्टिफिशियल ना हो। प्यार हो तो सच्चा हो, रूहानियत तो आर्टिफिशियल हो नहीं सकती। इससे अपनापन, लास्ट बार आज के समय की डिमांड, प्यारे भाई और बहनों, हम खूब योग करें। गुलजार दादी से मैं मिलने गई, दादी ऐसे बैठे थे, मैंने पूछा दादी आप क्या सोच रहे हो, दादी बोले संसार में इतनी मृत्यु हो रही है, इतनी हलचल है, उसके लिए क्या करना है। मैंने कहा दादी क्या करेंगे, योग का दान ही तो दे सकते हैं, शांति ही तो दे सकते हैं। दादी ने कहा योग की भट्टियां करो, ये मैं दादी के बोल बता रही हूं। योग की भट्टियां अर्थात इंटेंस योग, शक्तिशाली योग और निरंतर। समय पूरा हो रहा है, नहीं तो मैं आपको 2-3 घटनाएं सुनाती कैसे प्रकृति ने, अग्नि ने वार किया, सारी दुकानें जल गईं चारों तरफ की, लेकिन बाबा के उस बच्चे की दुकान कुछ नहीं हुआ। जब वो भाई गया, उसने सोचा इस पर भी पता नहीं क्या हुआ होगा, उदासी से खोल रहा था, खोला तो बाबा की लाइट जग रही है और दुकान में इतना सा भी नुकसान नहीं हुआ। मैजिक, और सब नुकसान हो गए। मेक्सिको तूफान आया, उथल पाथल हुई, बाबा का फोटो जहां लगा था वहीं लगा रहा, कुछ नहीं। इसलिए अब अपने सेवा केंद्रों को, अपने घर को, स्वयं को योग का किला, योग का गढ़ वो हमें बनाना होगा। योग के सिवाय और कोई साधन नहीं है जिससे कि हम वर्तमान परिस्थितियों का सामना कर सकें। ओम शांति।